ओम शांति। सभी का प्रश्न है, ओम शांति। सभी का प्रश्न है कि अगर कोई स्थान पर सेवा की वृद्धि नहीं होती है तो इनका कारण अपनी कमी है या धरनी ऐसी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां भी ऐसी सेवा रुक रुक जाती है, ठहर जाती है, स्टूडेंट आने कम हो जाते हैं, तो फिर सेवा के जितने भी साधन होते हैं, जिस प्रकार से, अनेक प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि प्रदर्शनी से सेवा, क्योंकि ये प्रदर्शनी से सेवा जो करते हैं उसमें फेस टू फेस उनको समझाते हैं, उनका चेहरे पर का भाव भी देखते हैं, और उसके बाद शिविर का एक फॉर्म भराया जाता था, और शिविर का जब फॉर्म भराए जाते थे तो उनको ज़्यादा समझने के लिए लोग आते थे। तो ऐसे हर संडे को एक प्रदर्शनी रखते थे और उसमें बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चार पांच भाई होते थे जो चित्र लगाने के लिए सात आठ चित्र लेके जाते थे और अपना टिफिन भी साथ साथ ले जाते थे और सारे दिन सेवा करते थे। तो बहुत लोग, और फिर माइक भी रखते थे, अनाउंस करते थे, और वो जो प्रोग्राम होता है स्कूल में ही रखते थे, क्योंकि स्कूल में संडे को ही रखते थे क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी, तो बहुत सुविधा मिलती थी, बड़ा ग्राउंड मिलता था। तो ऐसे हर संडे का एक प्रोग्राम रहता था जिसमें अनेक प्रकार के लोग भी आते थे, और जब शिविर होती थी तो बहुत कम आते थे, लेकिन उसमें से दो तीन तो मतलब आ ही जाते थे। ऐसे हर जगह पे हर संडे का प्रोग्राम रहता था, और उसमें भी जब भी बहुत दूर होते हैं तो कम भी हो जाते थे, लेकिन ये प्रोग्राम चलता ही रहता था, तो ये बहुत सक्सेस प्रोग्राम था। दूसरा है कि जब भी उस कोर्स कराते हैं वो भी अच्छा होता है, लेकिन कोर्स करने के टाइम कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वो भी देखना पड़ता है कि उनको दो दिन कर दिया, तीसरे दिन नहीं भी आया, धीरज रखनी पड़ती है। जितनी हम धैर्यता रखते हैं तो सक्सेस भी होते हैं, तो धैर्यता रखनी पड़ती है। और तीसरा है कि छोटे छोटे ग्रुप में, संगठन में उनको बुलाते हैं, तो जब छोटे छोटे ग्रुप में, संगठन में उनको बुलाते हैं तो बहुत प्यार से बुलाते हैं, उनके लिए थोड़ी छोटी सी गिफ्ट रखते हैं तो वो आ जाते हैं। और फिर हर तरह का प्रोग्राम जब होता है तो एक ग्रुप को छोड़ते नहीं है, उनमें जितने भी होते हैं उनको भी बुलाते, आसपास वालों को भी बुलाने जाते थे। तो छोटे छोटे ग्रुप, उसके बाद कभी सेमिनार रख देते थे, कभी कॉम्पिटिशन रखते थे, कभी इनामी, जो अव्यक्तवाणियाँ होती है, व्यक्तवाणियों की, इसकी भी हम एग्जाम रखते थे, जिससे है ना, तो सबका उमंग उत्साह बहुत बढ़ जाता था, कौन पहले आएगा कौन पहले आएगा, ऐसा होता था। तो सारे जितने भी साधन है उस साधनों का प्रयोग करना चाहिए, और भी कई साधने हैं जिसका प्रयोग करने से लोगों को हम जागृत कर सकते हैं। उसके बाद हम जब भी कोई बीमार होता था तो हमारी दीदी कहती थी कि स्टूडेंट में कोई भी बीमार होते हैं तो देखने के लिए भेजती थी हमको कि जाओ भोग लेके जाओ, और जब उनके पास जाते थे ना, आधी बीमारी उसकी जैसे खत्म हो जाती थी, भोग देते थे और दीदी की याद भी देते थे, तो बहुत ही उनको भी अच्छा लगता था कि जल्दी जल्दी ठीक होकर के आ जाओ, और कोई भी जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो तो बताना, अपने भाई बहन आपकी सेवा जरूर करेंगे। तो करने का मतलब कि ऐसा भी नहीं होता कि वो कहते थे, लेकिन इतना कहने से भी उनका दिल बहुत ही अच्छा हो जाता था, उनको लगता था आधी बीमारी हमारी खत्म हो गई, हमारे पास भी कोई है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता था वो मृत्यु प्रसंग होता था, उसमें भी किसी स्टूडेंट का कोई भी शरीर छोड़ता था तो दीदी कहती सफ़ेद चादर लेके जाना और सुखड़ का हार लेके जाना। तो कभी परिचित है नहीं परिचित है तो भी हम जाते थे तो उनको इतनी भावनाएं बैठ जाती थी। सबसे ज़्यादा भावनाएं हमने मृत्यु प्रसंग में देखा है। और उसमें भी जब चादर उठाते थे और एक टैप भी ले जाते थे, तब तो टैप रिकॉर्ड था, तो ले जाते थे और गीत बजाते थे, सब शांति से खड़े रहते थे। और उसके बाद विधि पूरी होने के बाद हम उनको उनके परिवार में जो बड़े होते हैं उसको कहते हैं अगर हमारी ज़रूरत हो तो यहाँ भी हम आ सकते हैं। तो फिर हमको 3-4 दिन के बाद बुलाते थे तो वहाँ मृत्यु प्रवचन होता था। और मृत्यु प्रवचन में एक बात की हमने विशेष देखा था कि जब भी दूसरे कोई भी प्रसंग होता था, शादी होती थी या कोई भी गिफ्ट, कोई भी बर्थडे प्रोग्राम होता, उसमें इतना नहीं आते थे, लेकिन ये मृत्यु प्रवचन में तो भावनाओं के कारण बहुत लोग आते थे और फिर वो प्रोग्राम चलता था। तो फिर से निमंत्रण मिलता था कि हमारे पास आप आना। जब भी कोई का मृत्यु हो जाता था तो तुरंत ही दीदी को फोन करते थे कि बहनें आएगी ना, दीदी के धाम जरूर आएगी। तो ऐसे मृत्यु प्रवचन का बहुत प्रभाव पड़ता था। और उसके साथ साथ बाहर के लोग सत्यनारायण की कथाएं बहुत करते थे, तो सत्यनारायण की कथा का एक बुक्स बना दिया था जिसमें उनका कॉन्ट्रास्ट और हमारा उसमें अच्छी तरह से बताया था। तो जब ये सत्यनारायण की कथा सुन लेते थे उसके बाद हमारी कथाएं सुनते थे तो उनको लगता था कि कितना ये लीलावती कलावती तो कुछ नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे अनेक प्रकार से सेवा के साधन यूज करते थे। हमारा दीदी जी कहीं जाती नहीं थी लेकिन हमको भेजती बहुत थी, और हमको भी उस समय ऐसा लगता था दीदी क्यों हमारे पीछे पड़ जाती है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यहाँ बैठे बैठे जैसे बाबा सनली पर बैठे बैठे सारी दुनिया की मतलब कि कितना सेवा करते हैं। तो दीदी भी हमारी बहुत सेवा करती थी और कोई भी प्रोग्राम में हमको कभी भी मना नहीं करती, लेकिन उसकी एक बात रहती थी कि आप कहीं भी जाओ किसी से कुछ मांगो नहीं, किसी से कुछ भी नहीं मांगने का। और हम जब जाते थे तो वो लोग बहुत भावना से हमको बोलते थे आप ये ले जाओ ये ले जाओ। दीदी ने हमको स्ट्रिक बोला था कि वहाँ से कुछ भी नहीं लाना है, उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। तो कभी वो हमको जब प्रवचन करते थे तो जैसे गुरु दक्षिणा होती है वैसे हमको देते थे, तो हम कहते थे नहीं हमको नहीं नहीं हमको आप अपने पास ही रखो। तो उनको भावना और ही बढ़ जाती थी और ही उनके पास कुछ कुछ होता था, वो देने चाहते थे लेकिन लेते नहीं थे, तो भावनाएं उनकी बहुत बढ़ जाती थी। हम कहते आप इतना ही करो इस सेंटर पे आओ, सेंटर पे दीदी आपको बहुत याद करती है। तो क्या होता था कि दीदी है ना तो इनको मिलती थी और इतनी अच्छी बातें करती थी, और दीदी का एक नेचर था कि वो सबको भोजन जरूर खिला देती थी। तो हमने बोला कि देखो भोजन दीदी कराती है, तो दीदी ने बोला देखो प्रवचन है ना वो आप मुख से करते हो, पेट में भी कुछ जाना चाहिए, दोनों तरफ से अटैक होगा तो व्यक्ति जल्दी से बच जाएगा, ऐसे कहती थी। तो उनकी सेवा का जो रूप था बहुत अलग था और बहुत उमंगोसा रहता था। कोई भी मेला हो तो सबसे पहले हम करेंगे ऐसा रहता था, कोई भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले हमारे को ही करना है, कुछ भी हो जाए मीटिंग्स हो कुछ भी हो, लेकिन दीदी जरा भी हिम्मत नहीं हारती थी। और हमने देखा कि उसी समय में दीदी थी जोन इंचार्ज, वो जल्दी से हो गई थी, लेकिन कभी कभी हमको कहती थी कि चलो हाँ जाना है तो एसटी बस स्टैंड तक, क्योंकि उस समय गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, तो हमको कहती चलो, तो हम तो बैग भी नहीं उठा सकते थे और दीदी एक बैग उठाती थी और हम पीछे देखती थी, हम बहुत पीछे रह जाते, बोला इधर आओ, दोनों बैग उठा के हम उनके साथ साथ दौड़ते थे और एसटी में बैठते थे दीदी। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सिंपल ऐसी ऐसी बातें थी जो व्यक्ति को जल्दी से मतलब कि ऐसा होता था कि ये इतनी बड़ी दीदी और एसटी में जा रही है, तो लोगों का प्रभाव बहुत पड़ता था। तो सेंटर पर मतलब कि जब भी दादी जी भी कहती थी जब सेंटर में शो नहीं करोगे कोई भी प्रकार का, मीडियम रहोगे तो आपके स्टूडेंट आपका कहना मानेंगे। तो हमको एक बात याद आई कि बीजापुर में क्या हुआ था, एक सेंटर था उसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आते थे, लेकिन फिर भी बहुत प्रोग्राम करने के बाद भी कुछ कुछ आते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता थोड़े संपन्न थे, वो देखते थे यहाँ तो टेबल नहीं है, सोफा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके घर से ना फैन ला दिया, सोफा सेट ला दिया, कुर्सी ला दिया। तो स्टूडेंट ने देखा यहाँ तो कोई अभाव ही नहीं है। तो एक बार उनके पास प्रोग्राम हुआ घरों में, उन्होंने बोला बहन जी हमारे घर में है ना शादी का प्रोग्राम, हमारे भाई के पास है, हम सोफा नहीं है, अब दोगे क्या? उल्टा हो गया। तो दादी हमेशा कहती थी सेंटर पर बहनों को, जब टीचर की भट्टी होती थी तो कहते वो शो नहीं करने का, आपके पास जो भी है ना, चाहे पैसा भी हो चाहे चीज वस्तुएं, शो नहीं करो, सिंपल रहो, सिंपल रहोगे तो स्टूडेंट को आने का अच्छा लगेगा। तो ये दादी जी की, प्रकाशमणि दादी जी की सलाह थी ऐसी। तो फिर मतलब हर प्रकार से सेवा का साधन से अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है। दूसरी बात धरनी की है, कभी कभी धरनी भी ऐसी होती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हमको अपना अनुभव एक है कि हम तभी सेंटर पर रहते थे और सर्विस भी करते थे, लेकिन दीदी को हमको ऐसा कहती थी एक मास की छुट्टी लो और सब जगह पे जाओ, तो हमको भेजती थी। तो एक बार हमको सिद्धपुर में भेजा था। अब सिद्धपुर ऐसा गांव था जिसमें स्टूडेंट 10 था, 10 ही 10 ही रहते थे, कितने साल तक 10 ही थे। तो हम वहां गए तो स्टूडेंट तो क्लास करके चले जाते थे और उसके बाद हमको कहते हैं कि अभी घर के सफाई करनी है। तो वहां दो मंजिल का मकान था और जिसने दिया था ना बस भावना से दिया था, क्योंकि नीचे की जो स्टोर था, नीचे का था रूम, उसमें क्या था कि वो कोठियां रखी थी, कोठियां होती उस पर दीपक जलता था। तो वो कहती है कभी आप बुझाना नहीं और ऐसे रहने देना। तो वहां है ना तो ये कपड़े धुलाई करने का रहता था, नल बल सब वहां नीचे था। तो हम जब जाते थे ना तो एक प्रकार का वो बहन के साथ ही जाते थे लेकिन डर रहता था, मतलब भय लगता था। तो अब ठंड ठंड होता था अंदर से, धक धक होता था। तो हमने बोला कि अरे एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, जब भी वो 9 बजता था तो हमको अंदर से भी कपड़े धुलाई करने जाना है। हमको लगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो बहन ने हमको बताया कि देखो, इसने बताया नहीं हमको कुछ भी, लेकिन उसने बोला कि 6 बजे के बाद है ना हमको निकल जाना है यहाँ से। और गीता पाठशाला बहुत बनाई थी उन्होंने, गीता पाठशाला में बहुत स्टूडेंट, क्योंकि वो बहन जैसी वैसी नहीं थी, वो शिविर कराती थी, बड़े बड़े मेलों में शिविर कराती थी वो बहन जी, बहुत अच्छी थी और बचपन से ज्ञान में चलती थी। तो नियम धारणा भी बहुत अच्छा था, श्रीमद पर बहुत एक्यूरेट चलती थी। तो हमको बोलती थी कि चलो आज हम इस सेंटर पे जाएंगे, तो हम यहाँ क्यों नहीं रहने का, तो कभी उसने मुझे बताया नहीं। लेकिन उस सेंटर पर बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने बुलाया था, जैसे रामलोचन भाई आया, सूरज भाई आया, सबको बुला के देखा, बड़ी बड़ी बहनों को बुलाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा ही माहौल रहता था। तो हमने एक बार हम तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सके, हमको तो बहुत डर लगता था। तो मैं तो आई, फिर मैं दीदी को पूछा, दीदी वहाँ तो बहुत डर लगता है। तो वो जो इस भाई ने दिया था ना, उसकी युगल थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, हमने उसको पूछा कि आपने जो दिया है ना, बोला वो कि हमारा पूर्वज है ना वहाँ, मतलब कि कुछ ऐसा रहता है ना, इसलिए हमको मतलब कि करना पड़ता है। तो वहाँ स्टूडेंट बढ़ता ही नहीं था। बहन इतनी परेशान थी, 10 साल हो गया। उसके बाद एक बार मधुबन में आई थी, मधुबन में उस समय दादी जी है ना तो अपना किचन में बैठी थी, तो मुझे बोला कि मुझे बहुत परेशानी है, कौन सुनेगा मेरा। तो मैंने बोला गुलछा दादी से बताओ। तो दादी को हमने बोला ये आपसे मिलना चाहती है। तो बोला अच्छा मैं कमरे में जाती हूँ, वहाँ आना, मैं भी साथ में गई थी। तो उन्होंने बताया, मैं कैसे बताऊँ बड़ी दादी को। मैंने बोला नहीं शुरू करो, कोई बात नहीं। तो दादी जी ने बोला स्थान चेंज करो। लेकिन दीदी वो जो फ्री में मिला था, उस समय तो कुछ मिलता नहीं था, रेंट पर मिलता था, इतनी मतलब पैसा इतना नहीं होता था, तो रेंट पर लेते थे, मकान किसी का नहीं था उस समय। तो उन्होंने बोला ये तो फ्री में मिला है, दीदी कहती है, और क्यों आप ऐसे करते हो। लेकिन दादी ने कहा नहीं थोड़ा चेंज करो, भले वो भी रखो ना, तो दूसरा चेंज किया। दूसरा चेंज जैसे ही किया ना, इतने लोग बढ़ गए। तो ये भूमि का प्रभाव था, क्योंकि वहाँ प्रेत का ज्यादा रहता है, इसलिए वहाँ नहीं लोग आने से ही डरते थे। दूसरा एक मुझे प्रसंग याद आता है धरनी के बारे में, जबकि ये महाभारत का युद्ध था। महाभारत का युद्ध में जब ही निश्चित हो गया कि अभी होना ही है, कौरव तो अधर्म और अनीति में था और पांडव तो धर्म के मार्ग पर चलते थे और एक ही परिवार के थे, सभी सगे संबंधी थे, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का भाई, ऐसा ही था, उस पूरा परिवार था। अभी परिवारों के बीच में युद्ध, तो श्री कृष्ण ने अपने दूतों को बुलाया कि आप जाओ सब जगह पे तलाश करके आओ कि युद्ध करने के लिए ऐसी भूमि हो जो जहाँ युद्ध कर सके। तो सब जगह पे जाकर के दूतों ने अपनी अपनी बातें बताई। उसमें एक दूत ने बताया कि हम जिस जगह पे गए थे वहाँ एक प्रसंग बना था। वो क्या प्रसंग था कि वो जो खेत जोता था और उसमें पानी बहता रहता था, तो बड़े भाई है ना, उसको वो जो पानी बहता रहता था तो वो जोत नहीं सकता था, तकलीफ होती थी। तो उसने छोटे भाई को बोला कि जो मेड है, जो होल है, उसको आप भर दो, क्योंकि बारिश का पानी बहता रहेगा तो हम काम नहीं कर सकेंगे। तो उसने इतना जोर से बोला, तो उसने उससे सामने से बोला, आपको करना है तो कर दो, मैं नहीं करूँगा। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतनी उसको इस पर नफरत आ गई। उसने बोला कि उसको, वो उसके हाथ में जो चाकू था, चाकू लेके उसको गोद गोद करके मार दिया। उससे भी उसको शांति नहीं हुई, नफरत इतनी हो गई थी कि उसको घिसड़ के ले गया और जहाँ वो मेट था, जहाँ होल था, जहाँ से पानी आता था, उसमें उसको घुसा दिया, लातों मार मार के उसको घुसा दिया। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये भूमि अच्छी है क्योंकि वहाँ भाई भाई से प्रेम नहीं रहेगा। जब ये परिवार है और परिवार है तो इसमें अगर अगर प्रेम जागृत हो गया, अगर उसमें कोई ऐसी बात आ गई, मोह आ गया, तो ये युद्ध होगा नहीं। अभी युद्ध भाई भाई के बीच में कराना था, तो इसलिए भाई भाई के बीच में युद्ध कराना है, तो उसने बोला ये अब उपयुक्त जगह है और उसका नाम था कुरुक्षेत्र। वहाँ वो पसंद किया और उसको चुना गया। और आपने देखा होगा कि महाभारत युद्ध में लाखों करोड़ों मर गए होंगे, पूरी पूरी जो धरनी थी ना वो लाल लाल हो गई, इतना मतलब, क्योंकि ये धरनी ऐसी थी जिसमें नफरत था, गुस्सा था, एक दूसरे की बहुत बदला लेने की भावनाएं थी, बहुत कुछ था, जिसके कारण इस वाइब्रेशन, जो अशुद्ध वाइब्रेशन होता है, जो नफरत का वाइब्रेशन होता है, घृणा का वाइब्रेशन होता है, वो बहुत समय तक जमीन में रहता है, बहुत समय तक निकल नहीं सकता है। तो इसलिए युद्ध वहाँ ऐसे हो गया। दूसरी भूमि की बात याद आती है कि श्रवण कुमार को अपने माता पिता से बहुत प्यार था। उसने समझा कि कभी भी उसको दुख नहीं देता था, कभी भी दुख नहीं दिया उसने। उसके माता पिता की एक इच्छा थी कि हमें यात्रा करा दो, तो यात्रा कराने के लिए कावड़ लेकर के उसमें दो पल्लों में उनको बिठाया और चलने लगा। चलते चलते जब यात्रा पूरी होने लगी, तभी श्रवण को पता नहीं क्या सोच चला, उसने बोला अभी मुझे आपको पैदल चलाना ही पड़ेगा। तो उसने कांवड़ नीचे उतारा और उसको दोनों को नीचे उतारा और बोला चलने लगो। तो पिताजी ने कहा कि ये भूमि है ना, जल्दी जल्दी पार करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी पार करनी पड़ेगी। तो वो जैसे भूमि पार हो गई तो श्रवण को अंदर से ऐसा हो गया, मैंने क्या किया। फिर से उसको कांवड़ में बिठा दिया और फिर उसको जब ले गया, तभी उसने पिताजी को पूछा ऐसे कैसा हो गया। उसने बोला तेरा कोई दोष नहीं है, ये भूमि का दोष है, क्योंकि भूमि जो हमने पार की वो थोड़ा सा टुकड़ा था ना, उसमें बहुत ही युद्ध होता था, बहुत ही नफरत और बहुत की भावना, तो तेरा सोच है बदल गया। तो जैसी भूमि होती है वैसे सोच भी चलती है, इसलिए जो जितना भी मतलब कि बाबा कहता है कि भूमि को देखो, और हमने भी देखा है कि जब भी पाठशाला खुलती है उसके बाद सेंटर खुलता है, जब जमीन लेते हैं तभी हमने देखा है कि बहुत 15 दिन तक भट्टी कराते हैं जमीन पे, वहाँ संदल नहीं होती है लेकिन ऐसे ही एक चटाई लेकर के करते हैं, और जब भी वो बनता है तभी भी जल्दी नहीं जाते हैं, एक मस्त भट्टी रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, रात दिन भट्टी चलती है और एक मास के बाद वाइब्रेशन सब ठीक हो जाता तभी वो सेंटर खुलता है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स में जब भी ये विधि होती है और विधि ऐसे ही रहती है, जब भी सेंटर खुलना है भट्टी शुरू, तो ये वाइब्रेशन एक मास के भट्टी के भाई बहनों के वाइब्रेशन होते हैं, तो ये वाइब्रेशन बहुत ही काम करते हैं। तो ये धरनी का प्रताप है। और दूसरा है कि कमी कमजोरी, कमियां तो सभी में होती है, फिर भी कई सेंटर बहुत अच्छा भी चलता है और कई सेंटर देखो तो नहीं चलता है, और वो नहीं चलता है उसका वजह हमारी कमियां भी होती है, इस कमियों के कारण भी बहुत नहीं चलता है। दूसरा है कि एक लोकेशन ऐसा होता है, लोकेशन स्थान पसंद करते हैं। हमने ये सुख शांति भवन में देखा कि अपने सामने तो है ना, तो रास्ता रास्ता है, हाईवे जैसा है, लेकिन पीछे का जो था ना वो बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वहां जो रहते थे ना वो रात दिन मजूरी करने वाले थे, जिनको जरा भी मतलब कि इतना इतना काम होता था, सुबह में निकल जाते थे, रात को आते थे, रात को भोजन बनाते थे, तो वहां कितना भी हम उनको बोलने जाते थे, तो भी कभी राखी का प्रोग्राम होता था तो भी हम उनको बोलने जाते थे कि आप आइए, या तो पीछे ही रहते हो तो भी वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास कमाई का जो रोज की कमाई हम रोज करते हैं। दूसरे हमारे सामने जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले थे, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले थे, उनको जब कहते थे तो बोला कि बहन जी हमको भगवान को याद करने की अभी क्या जरूरत है, मेडिटेशन करने की हमको क्या जरूरत, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सुविधा है, सब कुछ है। मैं हमारे कभी तो आओ, बोला नहीं जब ऐसा टाइम आएगा, अभी हम इतना यंग है, हमको क्या जरूरत है, हम ये अभी थोड़ा सुख भोग ले, उसके बाद जब हमारी उम्र हो जाएगी तभी हम आएंगे, इनका ये प्रश्न होता था। तो दोनों ही मतलब कि बहुत ही मेहनत करने के बाद सुख शांति भवन में इतने स्टूडेंट नहीं बढ़े, लेकिन जो हम गीता पाठशाला में जाते थे वहां बहुत स्टूडेंट हो गए, यहां जो था उसके डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो गए थे, इतने सारे स्टूडेंट हो गए थे। तो वाइब्रेशन व्यक्ति की कमियों के कारण भी, और दूसरा है कि हमने एक सिटी का नाम सुना था जिसमें बहुत बाबा के समय की वो बहन थी, और वो बहन ऐसी थी, अभी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो है ना किसी को, क्योंकि शुरुआत में क्या है कि वो बहुत कम पैसे में काम करते थे, बहुत कम पैसा यूज करते थे ना, तो बहनें उनके पास आ गई थी, बहनें तो थी लेकिन खाना बनाती थी तभी भी देखने जाती थी, बहुत टिक टिक होती थी, अगर खाना किसी ने लिया वो भी टिक टिक, कोई प्रोग्राम बनाना है तो भी वो बजट के बारे में बहुत टिक टिक, तो है ना बहुत बहुत सारी परेशान हो गई थी। और उसी एरिया में दूसरे दूसरे यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ वाले जो रहने वाले थे वो दूसरे दूसरे जगह पे जाते थे, दूसरी जगह पे इसलिए जाते थे कि भाई ये बहुत दूर है तो आप यहाँ खोल दो ना, तो कहते हमारे एरिया नहीं है, हम क्या करें, हमारे एरिया नहीं है इसलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत समझाया बहन जी को कि भाई आप यहाँ हमको आने दो, नहीं तो आप यहाँ तो कुछ आपके पास तो है तो होता नहीं, लेकिन वो बोला नहीं ये नहीं होगा, हमारी एरिया में आपको नहीं आना है। लेकिन बहुत समझाने के बाद उसने बोला, तो वहाँ है ना दो दो तीन तीन किलोमीटर में बहुत सारे सेंटर खुल गए, बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे। तो ये भी अपनी एक कमी होती है कि किसी को मतलब कि अपना ही चलाना, मैं जो कहूँ वही करना, मैं पन आता है, देहाभिमान आता है। दूसरा है कि जब भी कोई बहने सेंटर पर बहुत ही अपटूडेट रहती, अपटूडेट माना कि उसकी एक सलवट भी नहीं पड़ती है, तो थोड़े समय के लिए वो लोग है ना बहुत प्रभावित हो जाता है, उसके रूप से प्रभावित हो जाता है, उसके बोलने की उसकी वाणी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन लंबे टाइम नहीं चलता है, एक दो तीन साल में मालूम पड़ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रभावित हुए हैं, कोई रूप से प्रभावित हुए हैं, कोई उसकी वाणी से प्रभावित हुए हैं, वो हमेशा नहीं चलता है, उसके बाद फिर धीरे 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 लोग आना बंद कर देते हैं। तो कमी है अपनी। तीसरा है कि कोई कोई इंचार्ज बहनें होती हैं ना, तो सभी स्टूडेंट के साथ समानता का व्यवहार नहीं करती है। अगर उसके पास स्टूडेंट होते हैं ना, कोई पैसा वाला भी होता है और कोई गरीब भी होता है। कोई ऐसा होता है जो धन की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन तन और मन से बहुत सेवा करते हैं। जब भी बहन बुलाती है तभी वो आ जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो बहनें होती हैं ना, तो उनको जब पैसे की जब जरूरत होती है तो पैसे वाले को ज़्यादा पूछते हैं, और वो सारे दिन काम करते हैं, उसको पूछने का नहीं होता है। एक बार एक बहन ने क्या किया कि बहुत उनके पास जो आते थे मेहमान आते थे, उसमें पुराने जो थे वो बहुत समय से उनके पास पैसा मतलब भंडारी देते थे, बहुत पैसा देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक नया भाई आया, दो तीन दिन से आता था, वो भी गाड़ी लेके आता था। बेंची को मन में क्या हुआ मालूम नहीं, उसने दो पैकेट बनाया गोल्डन पेपर में, तो एक छोटा था एक बड़ा था। छोटा था ना, बोला ये तो नियमित आता ही है, उसको छोटा दिया उसको बड़ा दिया। छोटी सी बात थी, लेकिन जब उसकी युगल बैठी थी जिसने बहुत पैसा यज्ञ के लिए दिया था, तो उसको लगा कि देखो ये छोटे और बड़े पैकेट में इसको गुस्सा आ गया। उसने अपने घर में बोला कि अभी हमको है ना क्या है, उनको तो अभी मिलता रहता है, हमको क्या जरूरत। मतलब कि छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी सी बात ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो ये कमी बहनों की ऐसी होती है जिसके कारण स्टूडेंट को अंदर से मनमुटाव हो जाता है, अंदर से ये हो जाती है। हमारे वहाँ ऐसा था कि हमारी दीदी का एक गुण था कि वो शरबत बनाती थी तो बहुत सारे लोग बैठ जाते थे ना कुर्सी में, तो देखती थी कि बहुत लोग बैठे हैं। तो दूसरी बहनें क्या करती थी, तीन बैठे उसको देती थी, बाकी को नहीं देती थी। दीदी ने बोला क्यों ऐसा किया, बोला कि अपने पास तीन ही नारियल का पानी है, क्या करें। बुद्धू ऐसा कहा, तुमको है ना, इनको देखने गए अपने पास नींबू कितने हैं, इसका शरबत बना देना चाहिए ना। ऊपर आगे वाले को तो तीन दे, लेकिन पीछे वाले को भी दे ना, वो थोड़ी एक दूसरे को पूछने जाएंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दादी निर्मल संता भी ऐसा कहती थी कि जब भी हम मैं कुछ भी काटती थी समान समान टुकड़े काटती थी, कि कोई भी ब्रह्म भोजन में इसके में बहुत ज़्यादा है इसमें कम है, उसमें भी झगड़ा हो जाता था। तो इसलिए एक बहन है ना, वो जो काटती थी ना, वो जैसे वैसे काट के रख दिया, तो दादी ने देखा क्यों ऐसा किया, ये किसी में बड़े बड़े टुकड़े जाए गए किसी में छोटे रहे, तो तुरंत ही उसके मन में संकल्प चलता है। तो मन में संकल्प ही ना चले ऐसा ही काम करना है। तो ये दादियों की कितनी दूरदर्शिता थी, जो मतलब कि सेंटर में ऐसे चलता था। अभी एक दूसरा सेंटर था, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने को जब ये सेंटर दिया था ना, तभी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दीदी हमेशा परेशान रहती थी कि इनको दिया है, देखो दो दो मास में बहनें चेंज, दो दो मास में चेंज, क्योंकि वहाँ तीन भाई ऐसे रहते थे, तीन बहनें रहती थी, एक भाई एक बहन को दूसरे ये सब चलता था। और उनको अंदर से था कोई स्टूडेंट आने नहीं देना है, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी देते थे, तो ऐसा चलता था। एक बार है ना, तो बाबा को पूछा कि बाबा भी किस बहन को भेजे, तो एक बहन को बताया उसने, इसको भेजो। वो थोड़ी स्ट्रांग भी थी, लेकिन जब भी पहले गई ना तो कुछ नहीं किया उसने, उसने योग तपस्या शुरू किया। योग तपस्या शुरू करने के बाद उसने क्या किया कि बहनों को देखा, भाइयों को देखा, क्यों ऐसा होता था, वो सारा देखा। उसके बाद उसने है ना, तो किसी से कुछ भी लेने के लिए इनकार कर दिया, हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमारी बहनें ब्रह्म भोजन बनाएंगी, ब्रह्म भोजन कहीं और जगह पे होगा नहीं, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हम बनाएंगे हम खिलाएंगे। तो उस सेंटर में ऐसा था कि बहुत सिंपल थे वो भी, पैसा बहुत आता था लेकिन सिंपल बहुत थे, पर्दे सफ़ेद पर्दे ही होते थे, कोई रंगीन बंगीन पर्दे नहीं। आप देखो ना कि बहुत क्वालिटी वाले होते थे लेकिन सिंपल लगते थे, कोई कमी नहीं थी साधनों की, लेकिन साधन जो था ना वैसे सोफा, लेकिन भले इतनी कीमत का हो लेकिन बहुत सिंपल, वही डिजाइन कुछ भी नहीं। तो लोग आते थे सिंपल देखते थे कि देखो सेंटर तो ऐसा ही होना चाहिए मतलब। और इस प्रकार से लोगों को लगा कि बहनों को कभी बाजार में नहीं गई, कभी भी बाजार में नहीं जाती कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए बाजार में नहीं जाती थी। तो माता आती थी, उनको लगता बहनें क्या खाती होंगी, तो सब्जी देते थे, दूध देने आते थे, फिर देखती थी बहनों के चप्पल एक जैसे ही होते थे, किसी का फट गया किसी का, तो देखती थी कि अरे आप लोग बाजार में नहीं जाते, नहीं 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 बाबा बैठा है ना। तो ये माताएं है ना, सबका वो ले जाती थी, माप ले जाती थी और चप्पल सबका एक जैसा ला के देती थी। और ये बहन की इतनी ये थी, हमने वो देखा है कि सिंपल, वो ऐसी सिंपल थी कि वहाँ है ना, तो जो भी सामान जैसे हमारे फैंसी सामान देते हैं ना, उसमें वो जो लिखेंगे ना, चाहे कोई भी साबुन चाहे कोई भी क्रीम, तो सबको मिलती थी। और वहाँ है ना तो 5 साड़ियाँ तो सबको बैग में होती ही थी, बाकी की जो साड़ियाँ होती थी ना उसमें नाम नहीं होता था किसी का भी, और वो प्रेस करके रख देते थे और वही उठा करके वो पहन लेते थे। वो पहन लेते थे तो, और 3 बाथरूम थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक ही जैसी जगह, एक ही जैसा साबुन रखते थे धुलाई करने के लिए। और हमने वो देखा कि बहन जी का कोई ऐसा नहीं था कि बहन जी अलग वो अलग, खाना पीना साथ में, एक दूसरे की राह देख के खाते थे। और बहन जी कभी बाहर नहीं जाती थी, वो बहनों को भेजती थी, लेकिन बहनों को भी सिखाया था कि वहाँ से, क्योंकि गांव में बहुत कुछ मिलता है, कभी तरबूजा कभी खरबूजा कभी बहुत कुछ मिलता है सामान, तो भी उन्होंने बोला कभी उनको लेके नहीं आने का, उनको इतना ही बोलने का कि आप सेंटर पे आ जाना, सेंटर पर ही लाना। तो सेंटर पर आते थे तो बहन जी की एक और भी आदत थी ऐसी कि जब भी कोई आता था ना तो सारी बहनें बैठती थी, ऐसा नहीं कि अकेली बैठती थी, उसे क्या होता था बहनों को लगता था देखो हमको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो सेंटर इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि उनको उस सेंटर में एक ही मोबाइल वहाँ ही रहता था, जिसको भी बात करनी उस मोबाइल से करते थे। और जहाँ भी गीता पाठशाला में जाते थे तो वहाँ वो भाई है ना वही फोन कर देता था कि बहन पहुँच गई, जब निकले तभी बोला कि अब निकल गई है गाड़ी में आ रहे हैं, तो फोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फोन लेके जो सारे दिन बैठते वो भी नहीं होता था। तो उनका सेंटर में इतना स्टूडेंट हो गया कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो क्या था मंडर भी लगते थे, मोबाइल का जमाना किसी के पास मंडर ये नहीं है, एक मोबाइल रखा था, किसी को भी कहाँ भी बात करनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि बहन के आगे करे, कहीं भी कर सकते हो आप, लेकिन आप इस मोबाइल से करना। तो वो इतना सिंपल था कि लोगों का कांटेक्ट बहुत बढ़ गया, लोग आते थे, बड़े बड़े लोग भी आते थे। और वहाँ मृत्यु प्रवचन बहुत चला था, जिसमें एक एक मृत्यु प्रवचन, क्योंकि वो है ना ऐसा लोग थे कि जो सेंटर पे आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक थे, बॉम्बे में कलकत्ता में दिल्ली में उनकी फैक्ट्री होती, लेकिन मृत्यु प्रवचन में वो जरूर आ जाते थे। और मृत्यु प्रवचन से इतने प्रभावित हो जाते थे, पैसे तो बहुत थे, और इसी प्रसंग में तो आना है तो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 देख के जाते थे, आपको बताऊं। और सारी बहनों को मृत्यु प्रवचन की एक कॉपी दे दी थी, रोज ही पढ़ती रहती थी। और उसमें ऐसा भी नहीं कि यही बहन जाए, जिसकी भी जरूरत है जिसका भी काम नहीं वो सब जाते थे। तो लोगों को ये भी जेलसी भी नहीं थी कि इसको ही क्यों भेजते, इसको क्यों नहीं भेजते थे। घर का काम भी सबको रोटेशन में दिया था कि इसको आज बनाना है, इसको कल बनाना है, ब्रह्म भोजन साथ में बनाना। और कोई भी परिवार जो आते थे उनको ये लोग ब्रह्म भोजन जहाँ बनता है वहाँ उनको भोजन बनाने की क्यों नहीं देते थे, क्योंकि गृहस्थी होते हैं इसलिए नहीं, बहने ही बनाती थी, बड़ा बड़ा ब्रह्म भोजन भी बहने बनाती थी। तो ये उनकी एक आदत थी जिसके कारण सेंटर बहुत फूला फाला। और दूसरा है कि यहाँ जो राजस्थान में कहते हैं कठिन कठिन धरा है, धरा ऐसी है, तो उसमें भी क्या हुआ कि जब ही एक ट्रांसफर का टाइम आया था, ट्रांसफर हुई थी, ट्रांसफर का जब टाइम हुआ था उसमें दादी ने कहा था 2-3 साल पहले, बाबा ने भी कहा था ट्रांसफर होनी चाहिए, तो दादी ने कहा बाबा ने कहा तो ट्रांसफर करो, एक सेंटर की बहन दूसरे सेंटर पर जाएगी। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी बहनें हैं ना तो अपने जो सेंटर पर इतनी ये नहीं थी, लेकिन जिस सेंटर पर भेजा वहां बहुत कुछ था। तो जब भी निकले तो क्या हो, वहां की भंडारी, और वहां जब निकलते हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, तो गिफ्ट और पैसा सब कुछ अपने साथ में ले आते हैं, और साथ में उसके नंबर उसका एड्रेस लेके आते हैं, क्योंकि कनेक्शन रहे तो सेंटर की आमदनी बढ़ती रहे। वो तो ईमानदारी जो होती है ना, अमानत में खयानत, वो बहुत बहुत अच्छा काम नहीं करती है। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी बहनों ने ऐसा किया, लेकिन कोई कोई बहनों ने ऐसा नहीं किया। तो भंडारी का बहुत कंप्लेन आई, बहुत कंप्लेन आई। दादी के पास रोज कंप्लेन आती थी, हमारे सेंटर में ये चला गया, हमारे सेंटर का स्टूडेंट वहां चला जाता है, बहुत कुछ कंप्लेन आ गई। और स्टूडेंट भी क्या करते थे, अभी नई बहन आ रही है तो उन्होंने कोई कोई सेंटर पर तो अपनी भंडारी है ना वो अलग रख दी, अपना सामान थोड़ा सा था ना वो अलग रख दिया, बहन का पलंग जो है ना उसकी गद्दी अलग रख दिया और जैसे एकदम खाली कर दिया। वैसा एक सेंटर था और जिसमें राजस्थान में तो मोहिनी बहन थी उस समय ना, तो उन्होंने एक बहन को वहां भेजा, नीमच में भेजा था। जब ये नीमच है ना 92-93 में इतना बना नहीं था, एक छोटा सा एक रूम था, उसमें लेटरिन बाथरूम भी ठीक नहीं था। तो फिर वहां जब वो बहन गई, लेकिन वहां की बहन फिर उसके पास गई, तो उसने बताया था जो भी बहन अपने पास आए उससे कोई भी काम नहीं लेने का, सिर्फ मुरली चलाए, क्लास करावे, सभी भाई बहनों को मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे कोई स्थूल काम कराओ, बिल्कुल स्थूल काम नहीं कराने का, उसकी इतनी पालना करनी चाहिए, उसको इतना अच्छा लगे यहां तो ये कोई भी ये काम नहीं करने का, ऐसा बहन बोल के गई थी। फिर वो वहां जब गई तो उन्होंने तो ऐसा कर लिया था, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने योग शुरू कर दिया था, योग तपस्या बहुत शुरू कर दिया। और इतना जैसे वहां उतने स्टूडेंट बहुत कम थे क्योंकि धरनी कैसे ऐसी है, लेकिन उसने योग तपस्या किया, सब कुछ किया और धीरे धीरे है ना सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा, आसपास वाले ने देखा यहाँ तो बहुत शांति रहती है, बहुत अच्छा है। और फिर धीरे धीरे सेवा शुरू हुई तो लोग अच्छे अच्छे लोग आने लगे। तो एक भाई आया तो बहन को पूछा कि आप किस जात के हो, उसने बोला यहाँ जाति वाति का नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, जाति की बात नहीं है। तो कहते हैं कि आपको कोई कमी हो, तो बोला कि हमारे ऐसे तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन लेटरिन बाथरूम जो है ना उसमें पूरा ही कमरे में आ जाती है इसकी बांस। उसने बोला ऐसा है, उसने है ना दो दिन में आप बताओ लेटरिन बाथरूम बना दिया, अच्छी तरह से बना दिया। तो भाई जो जहां था ना उसने बोला कि ये क्या जादू हो गया, इतना हुआ नहीं अभी ये हो गया। और धीरे धीरे आसपास वाले आने लगे, स्टूडेंट बढ़ने लगे, स्टूडेंट जितने बढ़ने लगे तो फिर कंप्लेन आने लगी कि वो जो वहाँ विशेष भाई है ना उससे इनकी बहुत दोस्ती हो गई है, हो गया वो गया, उसके उसके ऊपर ये भी बहुत लगे। लेकिन फिर भी वो डरी नहीं कुछ, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत लोग आने लगे, फल फला फूला हो गया। जब वापिस जाने का हुआ तो भाई ने बहुत इंप्रेस हो गया था उससे कि बहन बहुत अच्छी सेवा करती है, कितनी श्रीमत पर चलती है, 2:30 बजे उठ करके योग करती है और नियमित क्लास, नियमित योग और सबके साथ। उनके साथ जो बहनें थी ना बड़ा बुरा व्यवहार भी करती थी लेकिन उसने कभी नहीं किया, तो बहुत इंप्रेस, बहनें भी बहुत इंप्रेस हो गई और भाई भी इंप्रेस हो गया। तब से लेके वो बहन को भाई हर साल कुछ भी प्रोग्राम होता है बुलाता रहता है। और फिर ये बहन जब वापिस आई तो उसने इस सेंटर की इतनी महिमा की जाके कि बहन ने मुझे है ना इतना, जैसे माँ बाप भी नहीं पालना करते इतनी पालना की, तो उनको इतना रियलाइज हो गया कि अरे रे हमने इतना इसको कितना दुख दिया। और जब ही वहाँ से जब निकली तो बहुत कुछ उन लोगों ने दिया, लेकिन उसने बोला कि सेंटर का है अब सेंटर में रहने दो, कुछ भी नहीं चाहिए। बोला पैसा तो ले जाओ, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं चाहिए। तो जहाँ कुछ भी त्याग की बातें आती है, तपस्या की बातें आती है, इसलिए तो बाबा ने समझ दिया है, ज्ञान दिया है कि भूमि कैसी भी हो कुछ भी हो लेकिन अगर तरक्की नहीं होती तो चेंज कर दो, लेकिन अपनी कमियों के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए। जब अपनी कमियों पर अटेंशन देंगे तो उसको भर सकते हैं। और दूसरी बात बताई कि अगर सब कुछ होते हुए भी नहीं होता है, इतनी कमियां हैं, तो बड़ी बड़ी बहनों का आप साथ लो, भाई क्यों नहीं हो रहा है, हम आपको साथ देते हैं तो साथ मांगो आप। और उससे क्या होगा कि वो साथ देंगे, अच्छी तरह से आपके पास आएंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो हो सकता है कि तरक्की भी हो जाए। क्योंकि कोई कोई बहनों में कमी भी होती है कि भाई बोलना आता नहीं, कभी कोई में ऐसा होता है कि प्रोग्राम करने का मैनेजमेंट नहीं आता है, तो ऐसी ऐसी अच्छी बहनों को बुलाओ जो आपका प्रोग्राम सेट कर दे और आपका आपको अच्छा भी हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी कमियां भी होती हैं ना, वो सेंटर को बर्बाद करने में बहुत ही एक होती है। तो ये छोटी छोटी कमियां हमें अगर पता नहीं है तो हमको जो बताते हैं ना उससे भी तो सीखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते कि देहाभिमान भी है, इंचार्ज है उसको कौन कहेगा। तो इसलिए इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा है कि त्याग तपस्या का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि हम जो पांडव भवन में रहते हो कैसी जगह थी, चलो कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आया तो सभी ठीक कर दिया, लेकिन इस यहां आने के बाद आपने देखा होगा माउंट आबू से जब यहां आते थे तो सभी के सिर पे बड़ा बड़ा थैला था, वो कोई इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था, सब चल चल के आए, 25 साल की उम्र थी उनकी, कभी प्रश्न नहीं हुआ ये बाबा हमको क्यों चला रहा है, और ऐसी जगह पे रखा जहां श्मशान घाट था, वहां भी जमीन कैसी थी, श्मशान घाट भूत प्रेत दिखाई देता था, बाबा ने कैसे चलाया उनको, तो मतलब कि वाइब्रेशन, और तो बजे उठ के योग करो ये करो, तो वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है, तो योग का वाइब्रेशन इतना फर्क पड़ता है, इसलिए बाबा ने कहा है जहां भी कुछ नहीं चलता है। तो अभी हमारे लॉकडाउन में तो कोई सेवा ऐसी हो नहीं रही है, झूम झूम प्रोग्राम हो रहा है, तो लोग भी कहते हैं एक एक प्रोग्राम जो होता है उसमें कहते हैं कि चार चार क्लास होता है, एक व्यक्ति YouTube में क्लास एक घंटा सुनती है, अभी सारा YouTube में देखो सारी दुनिया का भर का क्लास आता है, अभी इतना सारा आता है चॉइस करना पड़ता है किसका सुने किसका ना सुने, नहीं ऐसा ही होता है, नए नए लोगों का कौन सुनेगा, और सूरज भाई का सुनेंगे, शिवानी बहन का सुनेंगे, ऐसा सुनेंगे लोग भी, तो कहने का मतलब है कि वो उसमें भी नहीं जाओ, उसमें भी ये भी तो एक माया है, क्योंकि माया इसलिए है कि वो प्रोग्राम में जब एक बार नशा चढ़ जाता है ना तो उसे उतरता नहीं है। आज मैंने हमने देखा हमारी बहन जी है, वो चार प्रोग्राम देती है तो स्टूडियो ही बना दिया है, अभी वहाँ किचन में भी एक स्टूडियो बन गया है जिसमें वो युवा का प्रोग्राम करता है, तो कहने का मतलब अभी हर कंप्यूटर रूम स्टूडियो बन गया है, अभी इतना स्टूडियो में इतना प्रोग्राम आ रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा लॉकडाउन जो है ना उसमें दो प्रकार से काम करो, यहाँ बैठे बैठे सेवा भी करो लेकिन योग तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समय मिला है वो समय भाषण करने से भी ज्यादा हमें योग तपस्या में ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन दुनिया तक जाएगा, हम सेवा करें लेकिन योग से हम वाइब्रेशन बनाएंगे, तो आप देखो पांडव भवन का वाइब्रेशन जो है, ज्ञान सरोवर का इतना नहीं, ज्ञान सरोवर के दौड़ दौड़ के आते हैं, शांतिवन का वाइब्रेशन, तो हर जगह का अपना वाइब्रेशन होता है, और भगवान ने हमको ऐसी अपनी तिजोरी में बिठाया है जहाँ सब सुखद वाइब्रेशन है, इसलिए हमें भी जो भी सेवा करनी है दो प्रकार से करें, वाणी से भी करें लेकिन मनसा से ज्यादा करें, वाइब्रेशन यहां से हमें हर जगह फैलाना है। ओम शांति।